أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم آج سے انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں جو قرآن کی تیسری سورت ہے اور یہ قرآن کی دو عظیم سورتوں میں سے دوسری ہے. پہلی عظیم سورت ہمیں معلوم ہے سورہ البقرہ ہے جو الحمدللہ ہم نے حال ہی میں ختم کی ہے. یہ دوسری عظیم سورت ہم شروع کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں سورہ آل عمران کا جو سورہ البقرہ کے ساتھ ربط ہے وہ آپ کو پڑھا دوں, اور میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ یہ پوائنٹس آپ لکھیں, یا لکھیں اور یا ساتھ میں قرآن رکھ لیں اور پھر اس میں بار بار دیکھتے جائیں تاکہ یہ پوائنٹس آپ کو یاد ہو جائیں. جب تک ہمیں ایک سورت کا ربط نہیں سمجھ آتا تب تک بہت مشکل ہے کہ اس سورت میں موجود احکامات اور ان کی ہسٹورک امپورٹنس کے علاوہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے کہ اس حکم کا ہماری زندگی پہ کیا اطلاق ہوتا ہے. جب تک ہمیں وہ حالات نہ معلوم ہوں, جب تک ہمیں وہ موقع محل نہ معلوم ہو جو جس میں وہ آیت آئی ہے, اور اس سے پہلے والی آیات میں ویسے ہی احکامات اگر آئے ہیں تو ان کی کیا صورت ہے. سورہ آل عمران ایک انتہائی امیزنگ صورت میں اس کو کہوں گی, کیونکہ اگر آپ اس کو سورہ البقرہ کے سامنے رکھیں تو بالکل ایک آئینے کی طرح ان کے مضامین جو ہیں وہ ایک دوسرے میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں. اس میں اس کے دو بڑے حصے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں 200 آیات تک سمجھیں آپ ہیں. آیت نمبر 1 سے 101 تک اہل کتاب سے متعلق باتیں ہیں, ہسٹورک ریفرنسز ہیں, حضرت عیسیٰ کی کہانی ہے, حضرت مریم کی, حضرت زکریہ کی, اور سب اس میں اس چیز کا رد ہے جو ایک عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح یا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ. دوسرا حصہ امت مسلمہ سے متعلق ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جنگ احد اور جنگ بدر اس کا وہ بیک گراؤنڈ ہے. ان موقعوں پہ اور اس سے ریلیٹڈ یہ آیات نازل ہوئی ہیں. سورت کی تمہید آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک ہے جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے, اور اس کا میں آپ کو ایک نقشہ بھیجوں گی. یہ نقشہ ایک پرماننٹ تصویر آپ کے پاس رہے گی جس سے آپ ایک نظر دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی آیات جو ہیں وہ کس سبجیکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. دوسرا حصہ اس کا آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 32 تک ہے جس میں اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے. تیسرا حصہ آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 63 یعنی 63 تک ہے, اور یہاں پہ خاص طور پہ تثلیث کا جو عقیدہ ہے جس کو ہم ٹرینٹی کہتے ہیں کہ دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ, یا جو اللہ اور یسوع مسیح اور حضرت جبریل کا جو ایک عقیدہ ہے اور ایک وہ تثلیث ٹرینٹی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ جو ہے یا الہ جو ہے یہ تین کیریکٹرز کا مجموعہ ہے, عقیدہ تثلیث, اس کا رد ہے. اور اس کے رد کے لیے, اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے حضرت مریم اور حضرت زکریہ کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اس صورت میں. چوتھا حصہ اس کا آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک ہے, اور اس میں اہل کتاب کا جو اپنا شر ہے اور ان کے جو اپنے مسائل ہیں اور ان کی اپنی جو فرقہ بندیاں ہیں اور ان کے جو آپس میں فتنے ہیں ان کا ذکر ہے. یعنی ایک تنقید ہے ان کے اوپر کہ اگر تم اتنے پرفیکٹ ہو, اگر تم اتنے زبردست ہو تو پھر تم لوگوں میں اتنے زیادہ فتنے کیوں پائے جاتے ہیں. پانچواں حصہ اس کا آیت نمبر 102 سے 120 تک ہے, جس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 102 سے سورت کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو امت مسلمہ کے لیے ہے. تو اس میں جہاد اور پھر جہاد کا بیان بھی ایک تنظیمی آرڈر سے ہے کہ آپ نے تنظیم کیسے بنانی ہے. جہاد کا حصہ ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں پہ جہاد کے بنیادی اصول سمجھائے گئے ہیں. अगर आप रिवाइज करें, सोचें, याद है आपको वहाँ पे ये था कि अल्लाह की राह में मर जाने वाले को मुर्दा ना कहो बल्कि वो तो जिंदा हैं, वहाँ से इब्तिदा हुई थी और वहाँ से शहादत का जज्बा, और फिर उसमें मुख्तलिफ हिस्टोरिक झगड़ों के और जंगों का जिक्र है उसमें, जिसमें तालूत और जालूत का किस्सा है, हज़रत दाऊद से रिलेटेड बयान है कि वक़तल दाऊद जालूत के, जालूत को दाऊद ने मार दिया, बैतुल मक़दस की फ़तह का जिक्र है वहाँ पे। फिर ये है कि पहली दफ़ा जब बैतुल मक़दस में ये दाखिल हुए हैं और वहाँ पे इन्होंने रूगरदानियाँ की हैं और अल्लाह के हुक्म से ये इन्होंने इनकार किया है जो अल्लाह ने अल्फाज सिखाए थे कि वक़ूलू हित्ततन, उनको कहा गया कि तुम हित्ततन कहो, फ़बद्दलु लज़ीन ज़लमू, तो फिर ज़ालिम लोगों ने उस कलमे को बदल दिया, तो फिर इन पर एक रिज़ यानि एक गंदगी का अज़ाब नाजिल किया गया। या आयात थोड़ी सी आपको याद होंगी तो ये जहाद से मुतल्लिक हैं, और जहाद फिर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जहाद करना, और फिर जो जहाद की तंजीम साजी है उम्मत मुस्लिमा के लिए वो इन आयात में बयान की गई है। छठा पैराग्राफ इसका आयत नंबर 21 से आयत नंबर 89 को जो भी उर्दू में कहते हैं वहाँ तक है, और इसमें जंग उहुद की शिकस्त और फिर उसमें सहाबा की जो गलतियाँ थीं, मैं किसी गलत मतलब में ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रही, लेकिन जो रूगरदानी और जो एक मासूमियत में की हुई गलती सहाबा की जो हुई थी जंग उहुद में, उस पर तनकीद है, उस पर अल्लाह का तबसरा है और उस पर वईदें हैं और अल्लाह का उसमें सबक है कि तुम अगर बदर में इस तरह जीत गए हो लेकिन अगर तुम अल्लाह के अहकामात और रसूल के अहकामात से रूगरदानी इख्तियार करोगे तो फिर शिकस्त तुम्हारा नसीब है। बड़ी ही ये सबक आमोज़ आयात हैं, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम दिल की आँखों से ये अहकामात और ये आयात समझें। और फिर सूरत का इख्तितामिया जो है वो 10 आयात हैं, 190 से लेकर 200 तक, और इसमें इसके एंड में जो दो रुकू हैं सूरत के एंड में, उनको उरूसुल कुरान या जीनतुल कुरान कहा जाता है। वो इस कदर खूबसूरत हैं और उसमें इस कदर खूबसूरत दुआएं हैं कि वो मेरा भी ये अरमान है और आप सबको भी मैं ये कहती हूँ कि ये हम किसी तरह याद कर लें। वो इस कदर खूबसूरत और दिलगुदाज दुआएं हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सूरत का मरकज़ी मज़मून जो है वो है कि अहले किताब को दावत कैसे देनी है। अगर आपको याद हो, अलबकरा जो है वो एक उमूमी दावत है और उसमें बनी इसराइल का बहुत ज़्यादा बयान है। ये सूरत दोनों अहले किताब को एड्रेस करती है लेकिन इसमें नसरानियों का ज़्यादा बयान है। फिर अहले किताब में जो अच्छी बातें हैं उनका बयान है कि उनसे फ़ायदा कैसे उठाना है, इस्लाम की ताकत और इस्लाम की जो नसरानियत, जो इस्लाम की जो कज की जो नुसरत है वो अहले किताब की कौन सी अच्छी बातों से हो सकती है, फिर अहले किताब के शर से कैसे बचना है, और ये तो मेरे ख्याल में ये सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो इसका ये है। और चौथा मज़मून है कि मुसलमानों ने अपने आपस में एक नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन और इत्तेफाक कैसे कायम रखना है। तो ये इस सूरत का स्ट्रक्चर है और ये मैं आपको इसकी तस्वीर भेजूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक खूबसूरत मोमिना ने मुझे ये किताब गिफ्ट की थी बहुत साल पहले और ये मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ अपनी एक्सप्लेनेशंस में, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि मैं बाज़ाब्ता इस किताब की तस्वीरें आपको भेजूंगी। किताब की का जो सर वर्क है उसकी तस्वीर भी भेज दूंगी ताकि अगर आप में से किसी ने ये ख़रीदनी हो तो ज़रूर ख़रीदें, और जिस प्यारी बहन ने और मोमिना ने मुझे ये किताब तोहफे में दी है उनके लिए बहुत दुआ, बहुत दुआ। आप लोग भी उनके लिए बहुत दुआ करें, अल्लाह उन्हें बेहतरीन जज़ाए खैर दे, आमीन सुम आमीन। सूरह आले इमरान मदनी सूरत है और इसका ज़्यादातर हिस्सा जंग उहद के बाद 3 हिजरी में नाजिल हुआ है। कई सहाबा शहीद हो चुके थे क्योंकि जंग उहद में 70, 71 या 72 सहाबा शहीद हुए हैं और बेवाओं और यतीमों के मसाइल उस वक्त हल करने थे। हाँ, इसकी आयत नंबर 33-70 जो है वो चूंकि उसमें मुबाहला है और उसमें एक मुनाजरे जैसी कैफियत थी और ये 9 हिजरी का वाकया है। जब नजरान के ईसाई आए थे मदीना, और वहाँ पे उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑफ़र की थी इस मुबाहले की या इस मुकाबले की, जिसका ज़िक्र इस सूरत में, इस हिस्से में है। अच्छा जी, सूरह अल बकरा में तौहीद, रसालत, जहाद और इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह बयान हुए हैं। ये तो अब आपको याद होगा ना, 1 to 97 तौहीद थी, 99 to आगे उसकी वो पूरी, अल्लाह करे कि आपको याद हो, कि फिर रिसालत के मसाइल थे, रिसालत पर होने वाले एतराज़ात के जवाब थे, फिर जहाद का बयान था, और सूरत के एंड में इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का बयान था। यही मसाइल और यही तरतीब जो है इस सूरत में बेतरक्की यानी एडवांस्ड शक्ल में बयान हुई है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, सूरह अल बकरा में यहूद के इलाह की कम आईगी और बेहसियती बयान की गई थी। यहूद जिन चीज़ों को इलाह समझते थे, मसलन एक वो बछड़ा बछड़ा उन्होंने बना लिया था, उसकी इबादत करते थे, गोशाला परस्ती में ये मुब्तला हुए थे, फिर ये कहते थे कि हम तो जहन्नम में नहीं जाएंगे, हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के बेटे हैं, तो इन्होंने बड़े बड़े इलाह अपने लिए बनाए हुए थे। सूरह आले इमरान में, और इमरान ये यहाँ मैं आपको बता दूँ, हज़रत मरियम, सैयदा मरियम जो हैं हज़रत ईसा की वालदा, उनके उनके वालिद का नाम इमरान था। तो आले इमरान जो हैं ये इसलिए उनको कहा जाता है क्योंकि हज़रत मरियम के वालिद हज़रत इमरान थे, और फिर हज़रत मरियम और उनमें से हज़रत ईसा पैदा हुए हैं जो इनके पैगंबर हैं। तो नसारा का जो इलाह, क्योंकि उन्होंने हज़रत ईसा को अपना इलाह बना लिया कि ये अल्लाह का बेटा है, नऊज़ बिल्ला, उनका इज्ज़ और उनकी बशरियत का बयान जो है वो आले इमरान में है। सूरह अल बकरा में मुजाहिद की तरबियत के बयान हैं, और वो है घर की तरबियत, यानी एक एक उम्मत में नस्ल कैसे खड़ी करनी है मुजाहिदों की, घरों में क्या होना चाहिए। अगर आपको याद हो, जहाद के उसूल जहाँ बयान हुए थे और जहाद का बयान, वहाँ पे तलाक और निकाह के मसाइल सबसे पहले आए थे, अगर आपको याद हो सूरह अल बकरा में। क्यों? क्योंकि जब तक एक घर में सुकून और मोहब्बत और उसूल और शरा की पाबंदी नहीं होगी, उस घर में मुजाहिद कैसे पैदा होगा और फिर उसकी तरबियत कैसे होगी। तो वो तरबियत सूरह अल बकरा में बयान हुई है। अब वही तरक्की देकर जहाद की तंजीम और उसका डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त जो है वो आले इमरान में बयान हुआ है। फिर सूरह अल बकरा में रिसालत पर 9 एतराज़ात थे। याद है आपको, कुल मन अदुवल जिब्रील, यहाँ से शुरू हुए थे कि कह दो कि जो जिब्रील का दुश्मन है, तो अल्लाह ताला जो है वो उसका दुश्मन है जो इन फरिश्तों को बुरा कहता है। वहाँ से ये एतराज़ात शुरू हुए थे, आयत नंबर 101 या 102 है ये गालिबन। तो इन 9 एतराज़ात, इसी तरह आयत पर रिसालत पर 15 एतराज़ात जो हैं वो सूरह आले इमरान में बयान हुए हैं, और इंशाल्लाह हम उनको अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह अल बकरा में दावा तौहीद, पहला दावा अगर आपको याद हो, फ़ाबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, आयत नंबर 21 है ये। शुरू में पूरा बयान करके अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, फिर 3 ग्रोह बयान हुए थे लोगों के कि ये जो है ये मुत्तकीन है, हुदल लिल मुत्तकीन करके, फिर इन्नल्लज़ीना कफ़रू, ये काफिर हैं, और फिर उसके बाद वमिनन्नास मन यकूलू आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, ये जो थे ये मुनाफिक थे। तो 3 ग्रोह बयान करने के बाद, और फिर वो 2 मिसालें जो थीं कि उसने आग रोशन की और वो उस आग उनसे माहौल रोशन हो गया, लेकिन अल्लाह जो था वो उनकी बीनाई उचक कर ले गया क्योंकि उन्होंने इनकार किया, और फिर गोया वो अंधे हो गए और उस रोशनी से कोई फ़ायदा ना उठा सके। और उसके बाद कि आसमान से बारिश ना आ रही है, और वो जब बिजली कड़कती है तो ये चल पड़ते हैं, थोड़ा सा रास्ता इनको नज़र आता है, और जब अंधेर व इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू, जब इन पर अंधेरा होता है तो ये खड़े हो जाते हैं। ये मुनाफिक की मिसाल अल्लाह ने दी थी। इनके बाद अल्लाह ताला ने एक दावा किया था, फ़ाबुदू रब्बकुम, बस तुम बंदे बन जाओ अपने परवरदिगार के जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ये आयत नंबर 21 है। तो इस तरह के दावे जो हैं वो सूरह अल बकरा में आयत नंबर 21, आयत नंबर 163, آیت نمبر 254 اور پھر آیت نمبر 283 جو اس کی آمن الرسول وہ والی آیت اینڈ میں جو ہے اس کی، ان میں دعوی توحید ہے. اسی طرح سورہ آل عمران میں دعوی توحید ہے اور وہ بھی بالکل البقرہ کو ریفلیکٹ کرتا ہے. وہ آیات میں آپ کے سامنے ابھی بتاؤں گی کیونکہ میں نے اپنے پاس نوٹس لکھے ہوئے ہیں. تو یہ میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ اہل کتاب کو کہا گیا ہے، آیت نمبر 2, 6, 63, 18 اور 64. ٹھیک ہے جی، یہ اس کا ایک اہم کنیکشن ہے البقرہ کے ساتھ، کیونکہ یہ ان کے مضامین بہت ایک جیسے ہیں. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن جو ہے یہ ایک مربوط تحریر ہے، ایک مربوط کلام ہے، اس کا آپس میں باقاعدہ کنیکشن ہے. سورہ البقرہ میں مغضوب علیہم، جو الفاتحہ میں ہم کہتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم، یا اللہ ان کا عمل ان جیسے اعمال ہمیں نہ دے جن پر تیرا غضب ہوا، یہ مغضوب ہیں. تو البقرہ جو ہے وہ مغضوب قوموں کا بیان ہے، اس میں بنی اسرائیل کا بیان ہوا ہے، اصحاب سبت کا بیان ہوا ہے، اس میں فرعون والوں کا بیان ہوا ہے، یہ سب مغضوب ہیں، ان پہ غضب ہے. اس کے بعد ہم الفاتحہ میں کہتے ہیں ولدوالین، اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہو گئے. ان زوالین کا بیان جو ہے یہ شارحوں اور مفسرین کی رائے میں سب سے زیادہ وہ بیان آل عمران میں ہے، کیونکہ اہل کتاب میں سے اگر ایک گمراہ قوم ہے جو مغضوب نہیں ہے، اس پہ کبھی غضب نہیں ہوا، اس پہ کبھی عذاب نہیں آیا، لیکن وہ ہے گمراہ قوم، وہ نصارہ ہیں. تو اس سے میرا مطلب آپ کو سمجھانا ہے کہ ایک گمراہ قوم کو خطاب ہے، اس سے میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو زوالین کے لیے جو سزائیں ہیں اور جو ان کے لیے اگر کوئی عذاب اور اگر ان کے لیے کوئی وعید ہے تو وہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ زوالین کا مطلب ہے گمراہ، زوالین کا مطلب نصارہ نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے مثال دی گئی ہے. سورہ البقرہ میں یہود سے مباہلے کا ذکر ہے، یہود سے ایک کمپٹیشن ہے، ایک مناظرہ ہے، وہ آیت نمبر 94 میں اس کا بیان ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں نصرانیوں سے مباہلے کا ذکر ہے. یہ مقابلہ جو تھا یہ نجران کے نصارہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے، وہ آیت نمبر 61 میں ہے. دعوی توحید پہ دلائل عقلیہ دیے گئے ہیں، وہ وہی آیت ہے جو میں نے آپ کو بتائی، فعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور پھر اللہ نے وجعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات رزقا لکم. یہ سارے عقلی دلائل ہیں جو ہمیں روزانہ نظر آتے ہیں، یہ زمین فرش ہے، آسمان ایک چھت ہے، آسمان سے پانی آتا ہے، اس پانی میں سے پھر نباتات اگتی ہیں اور وہ ہمارے لیے رزق ہیں. تو یہ عقلی دلائل ہیں اور یہ سورہ البقرہ میں موجود ہیں. دعوی توحید پر عقلی دلائل، وحی کے دلائل اور حتیٰ کہ نقلی دلائل، یعنی کہ دوسری امتوں سے نقل کیے ہوئے دلائل جو ہیں وہ آل عمران میں موجود ہیں. سورہ البقرہ میں پچھلی اقوام کے جہاد کا بیان تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، جیسے اپنا بنی اسرائیل نے جو جہاد کیا یا جو لڑائی کی اور فرعون کے خلاف جو بھی کارروائی ہوئی اس کا ذکر البقرہ میں ہے. سورہ آل عمران میں امت مسلمہ کے جہاد کا بیان ہے، بدر اور احد کے واقعات پر تبصرہ جو ہے وہ اس میں ہے. سورہ البقرہ میں تحویل قبلہ پر اعتراض، یعنی کہ سیقول السفہا ما ولاہم عن قبلتہم اللتی، کہ کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے. دوسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. آل عمران میں آیت نمبر 96 میں بیت المقدس کا ذکر ہے کہ یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور جو مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ اولا ہے یا وہ زیادہ سپیریئر ہے، اور وہ بیت المقدس سے زیادہ پرانا بھی ہے. تو یہ بیان، یہ ریفرنسز جو ہیں یہ آیت نمبر 66 میں ہیں. زیادہ تر خطابات یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، یہ خطاب ہے نا، جیسے کوئی ایک قوم کو ایڈریس کر رہا ہے. تو البقرہ میں یہ خطابات یہود کے لیے ہیں، جبکہ آل عمران میں یہ خطابات نصارہ کے لیے ہیں. इसकी इम्तियाजी आयात जो हैं वो दुआ की तालीम है, तालीम दुआ कहते हैं उसको। इसकी इम्तियाजी आयात में ऐसी आयात हैं जिनमें सहाबा को सरजनिश की गई है और उनमें साफ बताया गया है कि सहाबा की शान बयान हुई है कि देखो तुमसे गलती हुई, तुमसे कोताही हुई, और फिर उसमें आम माफी का भी ऐलान है। जमात के उसूलों का बयान है, ये भी इसका एक इम्तियाज है। जमात की तंजीम यानी कि जमात के उसूल आयत नंबर 5 में है, जमात की तंजीम जो है आयत नंबर 81 में है, और तमाम अंबिया से आखिरी नबी की मदद का वादा लिया गया है। ये एक बहुत मीसाकुल अंबिया कहते हैं इसको। अभी तक अगर आपको याद हो हमने वादा अलस्त पढ़ा है, अलस्तु बि रब्बिकुम, कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा, रूहों ने कहा, क्यों नहीं, बला व रब्बिकुम, और आप ही हमारे रब हैं। ये अहदे अलस्त है, ये मीसाक अलस्त है जो हमारी रूहों ने किया हुआ है। इसके बाद एक मीसाकुल अंबिया है जो अंबिया की रूहों से वादा लिया गया था कि तुमने आखिरी नबी की इमदाद का वादा दिया है अल्लाह को, और वो मीसाकुल अंबिया जो है उसका जिक्र आले इमरान में है। तमाम उलमा से आयत नंबर 187, तमाम उलमा से अल्लाह ने वादा लिया है कि वो अल्लाह की किताब को बयान करेंगे। ये बहुत बहुत कीमती आयत है और ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और हम इसको समझेंगे। इसी सूरत में हज़रत ईसा की अब्दियत का बयान है, गो के सूरह अलमायदा में भी ये जिक्र है, सूरह अम्बिया में भी जिक्र है, लेकिन हज़रत ईसा की अब्दियत पर जो सबसे स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स हैं और सबसे स्ट्रांग जो स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस जिस चीज़ को हम कहते हैं उसका जिक्र जो है वो सूरह आले इमरान में है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक डाइग्रेशन करके आपको एक वाक्या सुनाती हूँ जिससे आपको आले इमरान की फजीलत मैंने समझानी है। फजीलत देखें लोग कि ये कहा गया और हदीस में ऐसे, हदीस में भी इसकी फजीलत बयान हुई है जो हमने अलबकरा की शुरू में पढ़ी थी, फिर उसके बाद उलमा ने इसके बयान किए हैं, लेकिन जो वाक्या मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये आप समझें कि प्रेजेंट डे एक लिहाज से ये ऑल इंडिया, जब ये हमारे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट एक ही था, ये उस वक्त से इस वाक्य का ताल्लुक है। सो दिस इज मेरे ख्याल में ये एक लेटेस्ट रेफरेंस है जो मैं इस सूरत के सपोर्ट में आपको दे सकती हूँ। जब ईसाई इंडिया आए थे, आपकी हमारी जो ये ऑल ऑल क्या नाम है इसका, ब्रिटिश राज जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इसको कहते हैं, तो वो तो मिशनरीज थे ना। अब ये हम सबको पता है कि वो असल में तो अपने तबलीग का बहाना करके वो इंडिया में दाखिल हुए थे और वो रोज़ाना झगड़े करते थे, मुसलमान उनसे अपने दीन के बारे में झगड़ते थे कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि तीन अल्लाह हैं, तीन अल्लाह, वो द फादर द सन एंड द होली स्पिरिट, ये कैसे हो सकता है। और हिंदू जो हैं वो भी उनके साथ शामिल हो जाते थे क्योंकि हिंदू एक पॉलीथियस्टिक मजहब है, तो वो अपने आप को नसारा को ज़रा करीब उनके करीब समझते थे। लेकिन हिंदुओं में जैन मजहब जो है वो मोनोथियस्टिक है या वो तौहीद परस्त एक इनकी ब्रांच है, वो मुसलमानों के साथ शामिल होकर इनसे लड़ते थे। तो अंग्रेज़ों ने उस वक्त एक पादरी जिसका नाम बेंडर था, और आप उसकी रिसर्च गूगल पे कर सकते हैं कि प्रीस्ट बेंडर जो थे वो उनको लेकर आए थे और वो कंपैरेटिव रिलीजन के स्पेशलिस्ट समझे जाते थे, उनको कुरान का भी इलम था और ये जो हिंदुओं की जो किताबें हैं महाभारत है और उपानिषद्स जिनको ये कहते हैं, जो इनके एक बड़े मजहबी इसका इनका लीडर था उसने वो लिखी हैं वो उपानिषद, तो ये वो इनका भी एक्सपर्ट था और वो बड़े मनाजरे उसने किए इंडिया में, और इतने वो इतना वो चरब जबान था और इतना ख़तरनाक था कि उसने मुसलमानों को अपने दीन में मशकूक कर दिया। हिंदू और जैन भी अपने मजहब में मशकूक हो गए कि ये क्या मुसीबत है। आखिर मुसलमानों को चैलेंज दिया गया कि आओ तुम इनके साथ एक खुला मुनाजरा करो। उस वक्त मौलाना रहमतुल्ला की रानवी रहमतुल्ला अलैह इंडिया में एक आलिम थे जो कलकत्ता में आए और 1856 1856 में कलकत्ता का जो रेस कोर्स ग्राउंड है आज भी है वहाँ पे, उसमें मौलाना रहमतुल्लाह अलैह और बेंडर का मुनाज़रा हुआ। बेंडर ने उस वक्त इस्लाम पर 18 एतराज़ात पेश किए और मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने उन 18 एतराज़ात का मुंह तोड़ जवाब दिया बाइबल से ही दिया, कुरान से तो दिया ही दिया, लेकिन उसके साथ बाइबल से भी। आप ये समझें कि जैसे आजकल अल्लाह बहुत ज़िंदगी दे और कामयाबी दे, जैसे डॉक्टर जाकिर नायक हैं, जैसे हमारे और प्यारे आलिम हैं जो हमारे दीन की सुरखरुई के लिए मेहनत करते हैं सुबह शाम, जैसे अहमद दीदात मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, तो ऐसे ही एक आलिम मौलाना रहमतुल्लाह अलैह थे। और उन्होंने सब एतराज़ात के मुंह तोड़ और दंदान शिकन जवाब दिए, और बेंडर बिल्कुल लाजवाब हो गया। और उस वक्त जाहिर है वहाँ पे जो हुजूम था, जो क्राउड था, वो भी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो अंग्रेज़ उठ खड़े हुए और दोनों को गिरफ्तार कर लिया, बेंडर को तो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, और मौलाना को भी, मौलाना को दहशतगर्दी के केस में गिरफ्तार किया। लेकिन चूंकि बेंडर को उन्होंने सेफ पैसेज दिया और इंडिया से भागने का मौका दिया, तो मौलाना भी सजाए मौत से बच गए। बेंडर तो अफगानिस्तान भाग गया और मौलाना रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो अपने घर में उन्होंने शुक्राने के नफल अदा किए और वो उस वक्त बच गए। फिर वो क्वेटा इमदादुल्ला महाजिर मक्की के साथ शामिल हुए और उन्होंने अपनी तबलीग की। बेंडर ने उस वक्त तुर्की के बादशाह को लिखा कि तुम्हारा दीन तो मशकूक है और तुम्हारा दीन कमज़ोर है और मेरे साथ कोई भी इस पर मुनाजरा करने को तैयार नहीं है। उस वक्त के जो तुर्की के बादशाह थे 1856 में, उन्होंने मक्का ख़त लिखा और मदद मांगी, इंडिया भी ख़त लिखा, वहाँ से मदद मांगी। उस वक्त इंडिया ने मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी का हवाला दिया और उनको मक्का से बुलाया गया। और जब ये आए, कुस्तनतुनिया आए थे, उस वक्त ये कैपिटल था इस्लामिक मुस्लिम कैलिफेट का, तो बेंडर के तो होश उड़ गए, क्योंकि उन बाकायदा बेंडर को गिरफ्तार करके बुलाने का हुक्म हुआ कि इसने खुद चैलेंज किया था, तो अब ये आकर कुस्तनतुनिया में मुनाजरा करेगा। बेंडर ने अफगानिस्तान में खुदकशी कर ली। अब मौलाना रहमत किरानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, इनकी एक किताब है अल जवाबु सही फी रद्दिल मसीह, ये एक किताब का रेफरेंस इन्होंने दिया है, तो अरबी की किताब है, ये आलूसी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। और इस किताब पर तबसरा करते हुए मौलाना किरानवी रहमतुल्लाह अलैह और इब्न तैमिया दोनों ने लिखा है कि रद्दिल मसीह, यानि मसीह का अल्लाह का बेटा होने का अकीदा, उसका बेहतरीन रद्द जो है वो सूरह आले इमरान में है। तो ये वाकया आपको सुनाने का मकसद ये था कि एक तो आले इमरान की फजीलत हम समझें, और दूसरा ये कि हमारे आलिमों ने और हमारे बड़ों ने कितनी मेहनत की है इस दीन की सरबुलंदी के लिए और लोगों तक अल्लाह की किताब पहुँचाने के लिए। तो नसरानियत के मनाजरों में जो बातें होती हैं, इंशाल्लाह ये अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही। सूरह आल इमरान का जो बैकग्राउंड मैंने आपको समझाना था और सूरह आल इमरान का सूरह अल बकरा के साथ जो रब्त है वो आपको समझाना था, वो मैंने बता दिया है। एक थोड़ा सा एक मुख्तसर कॉमेंट्री जो है वो मैं इसके मरकज़ी मज़मून पे करना चाहूँगी कि चार तदबीरें इख्तियार करने को कहा है अल्लाह ने, और अल्लाह ने यह फरमाया है कि काफिरों और बिलखसूस अहले किताब पर गलबा हासिल किया जा सकता है। और वो चार तदबीरें क्या हैं? अहले किताब को इस्लाम की दावत दी जाए और उनसे मुकालमा, मुबाहसा, मुजादला और मुबाहला किया जाए। ये चार बातें हैं। मुकालमा, आप जब बात कर रहे हो आपको बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। मुबाहसा, आर्ग्यूमेंट, जब आप आर्ग्यूमेंट भी आप लॉजिक से करें, उनकी किताबों की नॉलेज हो आपको। मुजादला जो है ये फिर ये ज़्यादा ऊंचे दर्जे की बहस है। और फिर मुबाहला जो है ये चैलेंज करना है कि अगर तुम झूठे हो तो तुम पर अल्लाह की लानत हो, और अगर हम झूठे हैं, यानी ये एक्सट्रीम दर्जे का ये दावा है, और ये दावा बग़ैर मुकम्मल नॉलेज के और बग़ैर मुकम्मल तैयारी के नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है कि अहले किताब में मौजूद खैर को दरियाफ्त किया जाए, उनमें मौजूद अच्छी बातों को, कि इनको कहो वक़ालू तआलौ इला कलिमतिन सवाउन बैनकुम बैनना व बैनकुम, आ जाओ एक बात की तरफ जो बराबर है हमारे और तुम्हारे दरमियान। तो वहाँ ये उसूल है किसी से भी बहस करने का कि पहले जो आपस में सिमिलैरिटीज़ हैं, जो एक जैसी बातें हैं, जो कद्र मुश्तरक है, बात वहां से शुरू की जाए। अगर बात ही आप दूर के झगड़े से शुरू करेंगे तो फिर कैसे एक पॉइंट पर आकर इकट्ठे हो सकते हैं। तो उनमें मौजूद खैर को दरियाफ्त किया जाए और उसे इस्लाम के हक में इस्तेमाल किया जाए। तीसरा पॉइंट है कि अहले किताब में मौजूद शर से मुकम्मल आगाही हासिल करनी और उससे बचने की भरपूर कोशिश की जाए। और चौथा पॉइंट है कि उम्मत मुस्लिमा की सफ़ों में कामिल इत्तेहाद, इत्तेफाक, तंजीम, डिसिप्लिन पैदा किया जाए, तक्वा की बुनियाद पर उम्मत की तंजीम की जाए और जंग उहुद की शिकस्त को स्टडी करके, सब अपनी सब शिकस्तों को स्टडी करके, आज अगर तालीम के मैदान में, आज अगर तहकीक के मैदान में, आज लिसानियत के मैदान में, आज सकाफत के मैदान में, आज बिजनेस के मैदान में, हर चीज़ में, इंडस्ट्री में, हर चीज़ में हमें शिकस्त क्यों हो रही है। इन तो जंग उहुद की शिकस्त के असबाब का जायज़ा लेकर मुस्तकबिल में ऐसी कमज़ोरियों पर और ख़ास तौर पे मुनाफ़क़त की जो लानत है उस पर काबू हासिल किया जाए। ये चार तदबीरें हैं, ये चार सजेशंस हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल भी यही इंट्रोडक्शन चलेगा और इसके बाद हम आले इमरान की स्टडी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।